न्यायियो अध्याय 16। परंतु शिमशोन आधी रात तक पड़ा रहकर आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बेड़ों समेत उखाड़ लिया और अपने कंधों पर रखकर उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के सामने है। न्यायियों 16:3 पर हेब्रोन गाजा से 25 मील या 38 किलोमीटर दूर है। उसने उन फाटकों को वहां ले जाकर फेंक दिया। फिलिस्तियों को सेना की टुकड़ी भेजनी पड़ी कि फाटकों को वहां से उठाकर वापस लाया जाए। वो फिर से बैरियों के प्रदेश में गया। आग से खेलने वाला एक दिन जलता ही है। जब कोई सफलता पाले और अपनी भावनाओं में खेलने लगे तो वो सोचता है कि परिस्थितियां उसकी गुलाम है। वो सोचता है कि उसका कुछ नहीं होगा, परंतु एक ना एक दिन वो फंस ही जाता है। इसके बाद वो सोरेक नाम नाले में रहने वाली दलीला नाम एक स्त्री से प्रीति करने लगा। तब फिलिस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसलाकर बूझ ले कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हो कि उसे बांध कर दबा रखे, तब हम तुझे 11-1100 टुकड़े चांदी देंगे। न्यायियों 16:4-5 पद। उन्होंने दलीला को ललचाकर अपनी ओर कर लिया। लालच में आकर दलीला ने उसकी शक्ति का रहस्य जानना चाहा। शिमशोन ने कहा कि 7 ऐसी तातों से उसे बांधा जाए जो कभी सुखाई न गई हो तो वो सामान्य मनुष्य हो जाएगा। दलीला ने उसे दुलार कर सुला दिया और फिलिस्तियों के सरदारों द्वारा लाई गई गीली तातों से उसे बांध दिया। उसके घर में फिलिस्ती तो पहले से ही छिपे बैठे थे। अतः उसने कहा, हे शिमशोन, फिलिस्ती तेरे घात में है। वो जैसे ही उठा सब ताते टूट गई जैसे कि धागे को आग की लौ लग गई हो। दलीला ने इटलाते हुए उससे कहा, तूने तो मुझसे छल किया और झूठ कहा है, बता देना कि तू किस चीज से बन सकता है। शिमशोन ने कहा कि उन्होंने गलती की, उन्होंने उसे पुरानी तातों से बांधा था। यदि वे उसे नई नई रस्सियों से बांधते जो कभी काम नहीं आई थी तो उसकी शक्ति जाती रहेगी। दलीला ने फिर से उसे दुलार कर सुला दिया और उसे नई नई रस्सियों से बांध कर कहा, हे शिमशोन, फिलिस्ती तेरे घात में है। जब वो जागा तो वे रस्सियां धागे के समान टूट गई और उसने छिपे हुए फिलिस्तियों को मार गिराया। दलीला फिर इटलाती हुए कहा, शिमशोन, तूने मुझसे झूठ कहा है, तू मुझे अपनी शक्ति का भेद बताना नहीं चाहता है। शिमशोन ने कहा, यदि तू मेरे सिर की 7 लटे ताने में बुने तो मैं बंध सकूंगा। आप शिमशोन को सभाषी देंगे कि वो दलीला को मूर्ख बना रहा है, परंतु उसका दोष यही है कि वो धीरे धीरे दलीला से समझौता कर रहा है। उसे साफ साफ कह देना था कि दलीला को इस बात से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी चतुराई दिखा रहा था। ध्यान दीजिए कि वो सच्चाई के निकट आ रहा है, उसने उसे अपने बालों तक पहुंचा दिया है। लोग परमेश्वर के साथ जीवन बिताने का निर्णय ले लेते हैं कि वे केवल परमेश्वर के साथ ही जीवन व्यतीत करेंगे। तब एक दिन फोन आता है कि आज रात पार्टी है और बियर की व्यवस्था है, बड़ा मजा आएगा। आप स्पष्ट कह सकते हैं कि अब आपकी जीवन शैली बदल गई है, आप यीशु के अनुयायी हैं। अतः आप अनुपस्थिति की क्षमा चाहते हैं, परंतु आप उत्तर देते हैं कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं और आप जल्दी सोना चाहते हैं। आप सोचेंगे कि आपकी विजय हो गई। नहीं, आपने एक तो झूठ कहा, दूसरा आपने भविष्य में आमंत्रणों का द्वार खुला छोड़ दिया। यदि आप साफ साफ कह देते कि अब आपका जीवन बदल गया है, तो वे फिर कभी आपको आमंत्रित नहीं करते, क्योंकि आपने द्वार बंद कर दिया है। बहाने बनाने से द्वार बुराई के लिए खुले रहते हैं। शिमशोन की यही भूल थी। जब शिमशोन सो गया, तब उसने उसके बाल तख्ते में ठोक दिए और उसे जगाया कि फिलिस्ती आ गए। वो उठा तो पूरा तख्ता ही उखड़ गया और उसने फिलिस्तियों को मार गिराया। आंसू प्रदर्शन नारियों का बड़ा ही सफल तरीका होता है। दलीला फिर उसे परेशान करने लगी और उसकी नाक में दम कर दिया, तो थक हार कर उसने भेद खोल दिया कि वो परमेश्वर का नाजिर है, इसलिए उसके सिर पर उस तरह कभी नहीं चला है। यदि उसे मोड़ दिया जाए तो वो निर्बल हो जाएगा। उसकी माता को स्वर्गदूत ने दर्शन में कहा था कि वो पुत्र जनेगी जो परमेश्वर के लिए अलग होगा और उसे नाजरी प्रथा पालन करना होगी कि उसके ना तो बाल काटे जाएं ना ही वो कभी मदिरा पिए। गिनती अध्याय 6 में नाजरी नियम दिए हुए हैं। ये परमेश्वर के निमित्त एक विशेष समर्पण का जीवन है। आज भी लोग ईस्टर से पहले चालीसा के समय कुछ न कुछ त्याग करके अपने आप को परमेश्वर के निमित्त कुछ समय के लिए समर्पित करते हैं। इस्राएल में भी यहूदी उत्सवों से पहले कुछ समय के लिए, जो उनके पवित्र दिन कहलाते हैं, प्रण करके अपना जीवन परमेश्वर के लिए अलग कर लेते हैं। गिनती अध्याय 6 के अनुसार इस प्रण को नाजरी प्रण कहते हैं। उन्हें ना तो बाल काटने हैं और ना ही अंगूर की मदिरा या सिरका पीना है, ना ही अंगूर का रस और अंगूर खाने हैं, यहां तक कि किशमिश भी नहीं खाना है। इसका कारण तो मैं नहीं जानता, परंतु ये एक प्रकार का आत्म त्याग है, क्योंकि किशमिश उनके लिए हर समय खाने वाली वस्तु होते थे। उस समय फलों की परिरक्षण के साधन नहीं थे, इसलिए वे फलों को सुखाकर रख लेते थे और जब इच्छा करती उन्हें खाते रहते थे। अब जब प्रण का समय पूरा हो जाए तो वे अपने सिर मुंडाकर बाल परमेश्वर को होम बलि कर दे। गिनती अध्याय 6 में नाजरी प्रण लिखे हैं। परंतु शिमशोन का नाजरी प्रण समर्पण संपूर्ण जीवन काल का था। यही उसकी शक्ति का रहस्य था जो उसने दलीला पर प्रकट कर दिया। उस मूर्ख को पता था कि उसने जो कुछ दलीला को बताया उसने किया, तो उसे ये भी सोचना था कि अब वो उसके बाल काटने की कोशिश भी करेगी। पौलुस तिमोथियों से कहता है, जवानी की लालसाओं से दूर भाग, क्योंकि वे मनुष्य की आत्मा को नाश कर देती है। कहा जाता है कि दलीला ने शिमशोन के बाल काट दिए थे। नहीं, उसने नाई को बुलवाकर उसके सिर पर उस तरह फिरवाया था। तब उसने कहा, हे शिमशोन, फिलिस्ती तेरे घात में है। तब वो चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की नाई बाहर जाकर झटकूंगा। वो तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। न्यायियों 16:20 पर। पुराने नियम में आगे चलकर हम देखेंगे कि इसराइल के राजा आसा के राज्यकाल के आरंभ में उसके सामने बैरियों की विशाल सेना खड़ी थी। उसने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने बैरियों को उसके हाथ में कर दिया। जब वो अपनी विजय से लौट रहा था, तब परमेश्वर के एक भविष्यत वक्ता ने उससे कहा, यहोवा तेरे साथ होगा यदि तू उसकी संगति में रहेगा। परंतु यदि तू उसे त्याग देगा तो वो भी तुझे त्याग देगा। इसी प्रकार शिमशोन को समस्त बुराइयों के बाद भी यहोवा उसके साथ तब तक रहा जब तक कि वो नाजरी प्रण में स्थिर रहा, परंतु इस समय वो परमेश्वर से इतना दूर हो गया था कि उसे पता भी नहीं चला परमेश्वर उसके पास से चला गया है। इस प्रकार का आत्मिक अंधापन होता है जो मनुष्य पर प्रभाव डालता है, और विशेष करके जब वो बैरी के क्षेत्र में पाप से खेल रहा हो, तब ये अति संभव हो जाता है कि आप परमेश्वर से दूर भटक जाए और अकेले रह जाए। आप अपने कामों में ऐसे व्यस्त हो जाते हैं कि आपको परमेश्वर का अभिषेक और परमेश्वर का सामर्थ आप पर हटने का एहसास भी नहीं होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि परमेश्वर का अभिषेक उनके जीवन पर है और परमेश्वर उनके जीवन से प्रसन्न है। ये एक गलत धारणा है। दूसरी ओर ये भी सच है कि परमेश्वर किसी की भूल या चूक के कारण अपना अभिषेक तुरंत हटा नहीं लेता है। मैंने लोगों के कहते सुना है कि परमेश्वर उन्हें उनकी चूक के उपरांत भी प्रयोग कर रहा है। उनके कहने का तात्पर्य यह होता है कि परमेश्वर उनके किसी भी काम को अस्वीकार नहीं करता है। उनका कहना है कि यदि परमेश्वर को उनके काम नहीं आते हैं तो वो उन पर से अभिषेक उठा लेगा, परंतु उनका विचार सही नहीं है। परमेश्वर के वरदानों और उसकी बुलाहट का संबंध मन फिराव से नहीं होता है, परंतु यदि समय रहते मन परिवर्तन नहीं किया गया तो एक समय ऐसा आता है कि उसका आत्मा हटा लिया जाता है जिसका आभास आपको नहीं होता, और कुछ समय के लिए आप प्रभाव और परिणाम पाने में असफल रहते हैं। आपकी आत्मिकता के बारे में भ्रमित हो जाना अति संभव है। यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं है तो हम स्वयं को छल करते हैं और हम में सच्चाई नहीं है। ऐसे कई विश्वासी हैं। शिमशोन की यही स्थिति थी कि उसे परमेश्वर के आत्मा के चले जाने का आभास भी नहीं हुआ। अब वो जिसने गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 सैनिक मार गिराया था इतना दुर्बल हो गया था कि कुछ ही लोगों ने उसे बेड़ियों में जकड़ दिया और उसकी आंखें निकाल ली तथा उसे बंदी गृह में रखकर चक्की चलवाने लगे। उस युग में चक्कियां कई 100 किलो की होती थी। ये चक्कियां वैसी ही होती थी जैसे कि हमारे देश में चूना पीसने की चक्की होती है जिसे बैल चलाते हैं, परंतु उससे भी बहुत अधिक भारी। उन्होंने शिमशोन को वहां बैल के स्थान पर जोत दिया। शिमशोन की दशा 1 जनवरी की सी हो गई थी, वरन बदतर वो देख नहीं पाता था। दिन भर उसे चक्की चलाते रहना पड़ता था। उसके जीवन में आशा ही नहीं रही थी। जब पलिस्तियों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे अजा को ले जाकर पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वो बंदी गृह में चक्की पीसने लगा, न्यायियों 16:21 पद। मेरे विचार में अनियंत्रित लालसा और पाप में मगन जीवन के परिणाम का ये एक सर्वोत्तम उदाहरण है। उसका परिणाम ये होता है कि आप परमेश्वर के सत्य और उसकी वास्तविकता के प्रति अंधे कर दिए जाते हैं। दूसरा, आप बंदी बना लिए जाते हैं और आप एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहां से छुटकारा पाना असंभव हो जाता है। आरंभ में तो आपके लिए वो मनोरंजन, उत्तेजना, आनंद और धूमधाम का माहौल होता है, परंतु कुछ समय बाद जब वो आपको जकड़ लेता है तब आपका आनंद समाप्त हो जाता है और आप उसे मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं परंतु असफल रहते हैं। वो आपकी दिनचर्या बन जाता है। आप अपने आप से घृणा करने लगते हैं, अपने काम से घृणा करने लगते हैं। आप मुक्ति पाना चाहते हैं परंतु असंभव। आपका जीवन दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है, आप जीना ही व्यर्थ समझने लगते हैं, आपका जीवन दुखदायी हो जाता है और आप एक प्रकार से चक्की में पिसने लगते हैं। इस प्रकार शिमशोन पाप और अनियंत्रित अभिलाषाओं के जीवन के प्रभाव का एक उत्तम उदाहरण है। उसके सिर के बाल मुंड जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। न्यायियों 16:22 पद। मैं यहाँ परमेश्वर के अनुपम अनुग्रह को देखता हूँ। शिमशोन ने तो उसे ध्वस्त कर दिया था, उनसे महानता की क्षमता थी, उसमें परमेश्वर की प्रजा को बैरियों से मुक्त कराने का सामर्थ था। इसराइल के इतिहास में मुक्तिदाताओं की सूची में अपना नाम सबसे ऊपर लाने का उसे अवसर प्राप्त था। उसका नाम दाऊद और शमूएल की श्रेणी में आता, परंतु वो अपने मनोवेग और अपनी लालसाओं को जीत नहीं पाया और परिणाम स्वरूप वो अंधा किया गया, बंदी बनाया गया और जानवरों की तरह चक्की चलाने लगा। अब जो हुआ सो हुआ, उसके सिर के बाल मुंड जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। न्यायियों 16:22 पद। यहां सुसमाचार है, हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम सब ने परमेश्वर को निराश किया है। हम सब की अवस्था यह है कि हमें मुक्ति की आशा नहीं है, परंतु परमेश्वर अनुग्रहकारी है। यद्यपि हमने उसे निराश किया है, वो हमें निराश नहीं करता है, चाहे हम उसे त्याग भी दें। यदि हम उसके पास लौट आए तो वो दयालु और अनुग्रहकारी है। उबाने वाले काम में सोचने का समय बहुत मिलता है और मेरे विचार में शिमशोन ने भी चक्की चलाते समय बहुत सोचा विचारा होगा। वो अपने अतीत को याद कर करके सोचता होगा कि उसने कैसी मूर्खता की। वो मन ही मन कहता होगा, यदि मैंने ऐसे ही किया होता या वैसे ही किया होता, यदि मैं दलीला से दूर ही रहता आदि। वो महाप्रतापी पुरुष आज अपना रास्ता भी नहीं जानता, उसका जीवन अनिश्चितता से पूर्ण था, वो बिल्कुल नीचे गिर गया था। परमेश्वर हमें नीचे लाता है कि हम ऊपर देखें। शिमशोन भी ऊपर देखने लगा था। मुझे पूरा विश्वास है कि जब उसके सिर के बाल बढ़ रहे थे तब वो मन ही मन अपने समर्पण को क्षमा याचना द्वारा नया करता जाता होगा कि परमेश्वर अब जो बचा है वो तेरा है। अब वो बात तो रही नहीं, परंतु खंडर भी तेरे ही है। फिलिस्ती अपने दागोन नामक देवता के भवन में उत्सव मना रहे थे। उसी समय किसी के मन में ये विचार आया कि शिमशोन को वहां बुलवाकर उसकी इस दीन अवस्था का ठट्टा किया जाए, क्योंकि उसने उन्हें बहुत सताया था। वे शिमशोन को बंदीगृह से निकालकर लाए और उसके साथ अभद्र खिलवाड़ करके उसका ठट्टा करने लगे। वे उसके सामने पाव लगा देते और जब वो ठोकर खाकर गिर जाता तब वे ठट्टा करके खूब हंसते। शिमशोन ने यहोवा से विनती की, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं फिलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। दाऊद ने बेतशेबा के साथ व्यभिचार किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसका पुत्र जन्म लेते ही मर गया। दाऊद ने अपने पश्चाताप का भजन लिखा था, भजन संहिता 51, जिसमें वो कहता है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। इसी मुद्रा में शिमशोन ने परमेश्वर का आत्मा एक बार फिर से मांगा, बस एक बार प्रभु। उसने उस युवक से जो उसे वहां लाया था कहा कि उसे उन खंभों तक वो पहुंचा दे जिन पर पूरी इमारत रुकी हुई थी। वो पिलिस्तियों से अपनी आंखों के निकाले जाने का बदला लेना चाहता था। उसने विश्वास के साथ उन खंभों को धक्का दिया और परमेश्वर का आत्मा उसमें पुनः समा गया। पूरा मंदिर गिरकर ध्वस्त हो गया। 3,000 पिलिस्ती वहां दबकर मर गए। वो भी मर गया। परमेश्वर के अनुग्रह से उसने फिर परमेश्वरीय सामर्थ पाया। ये उसके जीवन की सबसे बड़ी विजय थी। नए नियम में यीशु ने अपने शिष्यों के संबंध में एक बड़ी रोचक बात कही थी। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो वो किसी काम का नहीं। वो फेंका जाता है और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। शिमशोन परमेश्वर के इस रूपक का सर्वोत्तम उदाहरण है। परमेश्वर ने उस नमक को इस्राएल की मुक्ति दाता होने के लिए चुना था, परंतु उसकी नैतिक दुर्बलता के कारण स्वाद जाता रहा और वो फिलिस्तियों के द्वारा रौंदा गया। शिमशोन की कहानी आज उन सब लोगों द्वारा दोहराई जाती है जो अपनी क्षमता को गंवा रहे हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को प्रतिभाएं और योग्यताएं दी हैं, परंतु वे संसारिकता में लीन उन्हें नष्ट कर रहे हैं। वे उस महिमा को, उस सामर्थ को परिपूर्णता में प्राप्त नहीं कर रहे हैं जिसमें परमेश्वर चाहता है कि वे पाए। योग्यताओं का विनाश अनेकों की कहानी है। शिमशोन परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर सकता था। वो परमेश्वर के राज्य का एक महान सामर्थ्य सिद्ध होता। वो दूसरों को प्रभु में लाने में कैसा प्रभावी रहता, परंतु उसने सब कुछ नाश कर दिया। उसकी देह की अभिलाषाओं ने उसका सर्वनाश कर दिया।